तो पिछली बार हम लोगों ने हरि नाम की महिमा के बारे में बताया था और कई शास्त्रों से उदाहरण दे रहे थे हम नाम की महिमा के बारे में। और आगे हम यहीं पे यहीं से आगे बढ़ते हैं। ठाकुर भक्तिरोध कह रहे हैं, जीवन अनित्य जानो हसार, ताहे नाना विद विपद भार, नाम आश्रय करी जतने तुम्हें ठाको हो अपना काजे, कृष्ण नाम सुधा करियो पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही कुवार, चौदह भुवन माले। तो ठाकुर भक्तिनाथ कह रहे हैं कि ये अच्छी तरह से समझ लो कि जीवन क्या है, अनित्य है, अनित्य और नाना प्रकार के विपद से भरा है, कष्टों से भरा है ना। तो इसलिए बड़ी सावधानी से इस नाम का आश्रय लो, नाम आश्रय कोरी जतने तुम्ही, और हमेशा अपने इस नित्य सेवा में लगे रहो। फिर क्या बता रहे हैं, कृष्ण नाम सुधा कोरियो पान, ये नाम सुधामृत का, कृष्ण नाम सुधामृत का आप हमेशा पान करो और इस तरह से भक्ति ठाकुर को आप संतुष्ट करोगे, ठाकुर भक्तिनोद के प्राण को संतुष्ट करोगे। और चौदह भुवन में नाम के आश्रय के अलावा, नाम आश्रय के अलावा और कोई सहारा नहीं है, नाम बिना किछु नाही कुवार, चौदह भुवन माजे। तो इस तरह से जिसको नाम में आकर्षण हो जाता है, नाम में रुचि हो जाती है, फिर इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी आकर्षण उसको नहीं आकर्षित कर सकता। पिछले कुछ दिनों में हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे थे कि किस तरह से ये जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी भगवान की शक्ति है, है ना। और सबसे बड़े आकर्षण के कारण कौन है, वो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जिनका आकर्षण, जब जिसका आकर्षण कृष्ण के प्रति हो जाता है तो फिर और कोई आकर्षण नहीं रह जाता संसार में। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, केशी तीर्थ मत जाना, केशी घाट मत जाना, वहां जाओगे तो क्या होगा, सांसारिक आकर्षण समाप्त हो जाएगा। आपका आकर्षण अभी परिवार से है, परिवार के सदस्यों से है, सांसारिक लोगों से है, ये सारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा अगर आप केशी तीर्थ जाओगे। केशी तीर्थ में वहां पर आपने उस बालक का दर्शन कर लिया जो त्रिभंग रूप में खड़ा है, जिसने वंशी धारण की हुई है, तो फिर सांसारिक आकर्षण आपका समाप्त हो जाएगा। तो वृंदावन मत जाओ, खतरा है वहां पे। तो इसका मतलब श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं जाओ और गोविंद देव जी का दर्शन करो और बार बार उनका दर्शन करो। इस तरह से बार बार हम लोग जो हरि नाम लेंगे तो हमारा आकर्षण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सबसे बड़ा गुरुत्व आकर्षण तो इस हरि नाम में है, ये तो पूरे ब्रह्मांड में ये गुरुत्व आकर्षण की शक्ति चलती है और ब्रह्मांड में ये गुरुत्व आकर्षण की शक्ति भगवान के द्वारा स्थापित की गई है। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण तो उन्हीं के नाम में ही है और उनके नामों से जो आकर्षित हो जाता है, तो फिर ये ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण आपको इस संसार में नहीं रख सकता। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं और आप उछलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, आपको वापस नीचे ले आएगा, है कि नहीं। लेकिन नाम में जिसकी रुचि हो जाए फिर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, है कि नहीं। ये यहाँ पे लिखा, कृष्ण नाम सुधा कोरियो पान, जुड़ाओ भक्ति विनोदा प्राण, नाम बिना किछु नाही कुवार, चौदह भुवन माजे। तो एक बार नाम में अगर हमारा आकर्षण जागृत हो जाए, रुचि जागृत हो जाए, तो फिर हम इस संसार के नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो हरि नाम है ये भौतिक जगत का नाम नहीं है, शब्द ब्रह्म आध्यात्मिक जगत से अवतरित हुआ है। गोलोकीरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। तो नाम के प्रति रुचि जागृत करना, आकर्षण जागृत करना, ये सबसे उत्तम धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है। ये है असली धर्म। जीव का असली धर्म है नाम का आश्रय लेना, नाम के प्रति आकर्षण जागृत करना। और आगे यहां पिछले रूप गोस्वामी के उदित श्लोक को हम लोग बड़े ध्यान से सुने, जो उन्होंने विदग्ध माधव में वर्णन किया है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कडम्बनी घटयते कर्णा भूदे व्यास प्रियाम चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाना कृतिम नो जाने जानित जनिता यद्धीर अमृते कृष्णति वर्णद्वयी। बोलते मैं नहीं जानता हूं कि कितना अमृत भरा है इन अक्षरों में। कृष्णा जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम नहीं जानते कि कितना अमृत भरा हुआ है इसमें। तो जब कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है तो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे मुख में ये नृत्य कर रहा है। तो ऐसे कई जो है जीवा का जीवा की अभिलाषा मैं कर रहा हूं, और जब ये कर्ण रंध्र से ये हरिनाम प्रवेश करता है तो मैं लाखों कर्ण रंध्रों की आशा करता हूं, ऐसे लाखों कर्णों की आशा करता हूं। यानी कि एक जीवा पर्याप्त नहीं है, या एक कर्ण दो कर्ण पर्याप्त नहीं है, ऐसे लाखों जीवा होने चाहिए। काश मेरे लाखों जीवा होते, लाखों कर्ण होते, जिससे मैं हरिनाम ले पाता, हरिनाम सुन पाता। और जब ये हरिनाम मेरे हृदय के आंगन में, जैसे लिखा है चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृतिम। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जब हरिनाम मेरे हृदय के आंगन में क्या करता है, नृत्य करता है, तो मेरे मन के जितने कार्यकलाप है उसके ऊपर विजय पा लेता है, विजय पा लेता है, और जो सारी इंद्रियां जो है वो क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। लेकिन हमारी समस्या है कि हम लोगों की हमें एक ही जीवा जो है वो बहुत भारी पड़ती है, दो कर्ण ही भारी पड़ते हैं। जब हम लोग हरि नाम लेते हैं या हरि नाम सुनते हैं तो हम पीछे भागते हैं, नाम संकीर्तन से दूर भागते हैं। जब हरि नाम का आयोजन किया जाता है बहुत कम संख्या में भक्त होते हैं, नाम में रुचि नहीं है, क्योंकि दुर्दैव में दृश्यम हाजनी नानुरागा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षास्त्र का कि दुर्दैवम का मतलब है दुर्भाग्य, तो देखो मेरा कोई अनुराग ही नहीं है इस नाम में, है ना। क्योंकि जब जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो मैं अपने कमरे के भीतर चले जाता हूँ, छुप जाता हूँ मैं। नाम संकीर्तन से मुझे डर लगता है, नाम संकीर्तन मुझे भगा देता है, क्योंकि नाम के प्रति आकर्षण नहीं है, तो फिर आकर्षण कभी जागृत होगा भी नहीं। इसलिए नाम के प्रति आकर्षण अगर जागृत करना है, इस तरह से अगर लालसा जागृत करनी है जिस तरह से श्रील रूप गोस्वामी बतला रहे हैं, उसके लिए हमें निरंतर कृष्ण का नाम लेना होगा, तब होगा ये। आगे ठाकुर भक्तिनोद बड़ा अच्छा बता रहे हैं, भक्तिनोद ठाकुर ने नगर कीर्तन में क्या लिखा है। अरे इस संसार के इन बद्ध जीवात्माओं को तो देखो, नित्यानंद प्रभु जो है इसको ब्रज से सीधे इस हरिनाम को यहां पर लेकर आए हैं। ये देखो आप कि महादेव स्वयं अपने पांच मुखों के द्वारा इस नाम को ले रहे हैं, है ना। और ये हरिनाम कितना मधुर है, देखो ब्रह्मा जी देखिए अपने चार मुखों के द्वारा इन नामों का उच्चारण कर दे रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो भक्तिवत ठाकुर ने इस तरह से लिखा। और नारद मुनि क्या कर रहे हैं, अपनी वीणा के साथ वीणा बजाते हुए हरिनाम ले रहे हैं। ये हरिनाम कितना मधुर है, केवल लवाभास से ही अजामिल तर गया। भक्तिवत ठाकुर कहते हैं कोई निरंतर इस हरिनाम का अगर उच्चारण करेगा तो निश्चित रूप से वो ब्रज धाम में प्रवेश करेगा। ये हरिनाम कितना मधुर है। ब्रह्मा जी शिव जी, नारद जी सब हरि नाम ले रहे हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और बड़े बड़े देवी देवता भी जो है कलयुग में इस नाम संकीर्तन में भाग लेना चाहते हैं, स्वर्गलोक छोड़ के, स्वर्गलोक का सुख छोड़ के इस पृथ्वी में आना चाहते हैं नाम संकीर्तन में भाग लेना, नाम लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो नाम संकीर्तन जिनके बिल्कुल करीब है या संकीर्तन आंदोलन में जो जुड़े भी हुए हैं उनका नाम है गुरुचि नहीं। दुर्भाग्य यह है, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यह नहीं है कि कितने लोग जो हैं इस आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, दुर्भाग्य यह है जो आंदोलन में आ गए फिर भी संकीर्तन में भाग नहीं ले रहे हैं, यह दुर्भाग्य। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक बोला है ये तो ठीक है कि ये सब सांसारिक जीवात्माओं के लिए है ही, लेकिन हम लोगों के लिए भी है जो प्राकृत अवस्था में है, जिनका नाम में कोई भी आकर्षण नहीं है। तो अपने आप को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा हमें। प्रभुपाद जी के समय में सुविधाएं नहीं थी, है कि नहीं, सुविधाएं बहुत कम थी, भक्त लोग संघर्ष करते थे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, सुख सुविधा नहीं था, लेकिन प्रत्येक दिन भक्त लोग प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं ग्रंथों का वितरण करते और प्रत्येक दिन हरिनाम में जाते थे, रोज हरिनाम होता था। लेकिन आज हमारे पास सारी सुविधाएं, फिर भी हम लोग क्या है, अपने कमरों के भीतर छुपे हुए हैं। तो यह आंदोलन कमरों के भीतर छुपने के लिए नहीं है, यह आंदोलन जो है इसलिए प्रभुपाद ने कहा इसको आंदोलन, मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट। हरे कृष्णा मूवमेंट का मतलब है कि हमें चलते रहना पड़ेगा, गतिशील होना पड़ेगा, एक जगह खड़े नहीं हो सकते हम। एक जगह हम खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल वैसे तालाब की तरह हो जाएंगे जो कुछ समय के बाद बदबू मारने लगता है या बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है तालाब से। जैसे कई कुंड है, जलाशय होता है एक ही जगह पर, तो उसमें काई जम जाती है ना, उसमें से बदबू आने लगती है। कूलर में पानी जब रह जाता है तो एकदम सड़ा हुआ लगता है, हवा जो चलती है कूलर ऑन करते हैं और पानी अंदर जमा रहता है जो कई दिनों से, ऐसे में कूलर ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में क्या आती है, दुर्गंध आती है, सुगंध थोड़ा आती है। तो बिल्कुल वैसे हमारा भी होता है हाल, जब हम लोग जो इस युग धर्म का पालन नहीं करते हैं, जिस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है उसका पालन नहीं करते हैं, और जिस साधन से हमें पता है कि साध्य की प्राप्ति होगी उसी को ही भूल जाते हैं, तो फिर हमें फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसलिए पहले ही बताया गया सभी जो भक्ति के अंग है, 64 भक्ति के अंग है, उसमें सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। तो दुख की बात है, हम लोग सेमिनार्स में भी आ जाते हैं, क्लासेस में भी आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो हरिनाम होता है तो वहां कोई प्रकट नहीं होता है। वहां पे लोगों को इकट्ठा करना है बहुत मुश्किल होता है ना। सुख सारी सुविधाएं तो आ जाती हैं, साउंड सिस्टम भी आ जाता है, बिल बोर्ड्स भी आ जाते हैं, बैनर्स भी आ जाते हैं, पोस्टर्स भी आ जाते हैं, होर्डिंग्स भी लग जाते हैं, लेकिन वहां पे जीवित लोग नहीं होते हैं, जीते जाते भक्त नजर नहीं आते। तो इसको कहते हैं दुर्भाग्य, है ना। ये हमारा आंदोलन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जिस दिन भक्त लोग हरिनाम में जाना बंद कर देंगे, समझ लीजिए माया का प्रभाव हमारे ऊपर पूरी तरह से पड़ चुका है, कली का प्रभाव हमारे भीतर प्रवेश कर चुका है, क्योंकि हम लोग अब हरिनाम में भाग नहीं लेते, हरिनाम से भाग जाते हैं, हरिनाम को देखकर भाग जाते हैं, है ना। हरिनाम का सुनते ही हम लोग कमरों में घुस जाते हैं जैसे चूहा बिल में घुस जाता है। तो ये है हमारी हालत, ये है रुग्ण अवस्था। इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा कि आपकी क्या बीमारी है, आप लेटे हुए हैं क्या बीमारी है आप, तो उन्होंने कहा कि मेरी संख्या नहीं पूरी हो रही महाप्रभु, यही मेरी बीमारी है, वैसे तो ठीक हूं मैं। तो महाप्रभु ने कहा कि आपके लिए ये सब नियम नहीं है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि इतनी संख्या आप में आप जप करें, आपने तो सिद्धि प्राप्त कर ली है, आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं महाप्रभु, मेरी संख्या नहीं पूरी हो रही है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो भक्त अपनी संख्या नहीं पूरी कर पाता, जप की संख्या पूरी नहीं कर पाता है, हरिनाम जो संख्या पूरी करनी होती है वो नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, वो रुग्ण अवस्था में है, ही इज इन अ डिजीज कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ना वो संकीर्तन में जा रहा है ना वो अपनी निर्धारित संख्या पूरी कर रहा है, तो फिर क्या है, माया में जाएगा वो। ये जो मंत्र है, ये जो नाम है, ये गुरु के ही प्रतिनिधि हैं। मंत्र का उच्चारण करने का मतलब है कि साक्षात गुरु हमारे साथ में है। मंत्र का संबंध गुरु से होता है और मंत्र में हमारे इष्ट हैं। और इन मंत्रों का उच्चारण अगर नहीं होगा ठीक से, ध्यान पूर्वक आदर देते हुए नहीं होगा, तो उसका परिणाम ये होगा, हमारा संबंध गुरु से छूट जाएगा, हमारा संबंध भक्तों से टूट जाएगा, हमारा संबंध नहीं रहेगा जब गुरु से, तो सारी सेवाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। बिना श्रवण कीर्तन के अगर हम सेवा करेंगे तो फिर वह अपने आप में भक्ति नहीं मानी जाएगी। केवल कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को सेवा में लगाना पर्याप्त नहीं है, शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, इससे साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है साथ में। तो यह है बीमारी हम सबकी, है ना। तो यह आंदोलन केवल उदर भाजन के लिए नहीं है, यह आंदोलन है कर भाजन, कर भाजन के लिए। हाथ फैला के हमको भीख मांगनी चाहिए लोगों से कि आप सब भी हरिनाम लीजिए, जिस तरह से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे, द्वार द्वार जाते थे और सबको बोलते थे, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, घर घर जाके बोलते थे हरिनाम लो। तो नित्यानंद प्रभु ने जो कार्य किया, क्या उसमें अंश मात्र भी हम क्या कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे होंगे। इसलिए हम आध्यात्मिक जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सबकी गाड़ी रुक चुकी है अगर हम हरि नाम में नहीं भाग ले रहे हैं। तो नाम संकीर्तन में जो भक्त नहीं जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो ट्रेन में तो बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एसी कोच में भी बैठे हैं, लेकिन इंजन नहीं है उस गाड़ी में, वही स्टेशन में ही रहेंगे वो जिंदगी भर, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद उनको ट्रेन से भी उतार दिया जाएगा ये कहकर कि गाड़ी आगे नहीं जाने वाली है, आप उतर जाइए। यही हालत होगी हमारे साथ जब हम लोग हरिनाम लेना बंद कर देंगे, संकीर्तन में जाना बंद कर देंगे, हरिनाम में जाना बंद कर देंगे, तो हम सब सूखे पड़ जाएंगे, हमारे हृदय में अकाल आ जाएगा और फिर हम लोग माया का कीर्तन करेंगे। संकीर्तन तो करना ही पड़ेगा, कीर्तन तो किसी ना किसी का करना पड़ेगा, या माया का गुणगान करो या कृष्ण का गुणगान करो, फैसला करो किसका करो। अम्बरीश महाराज के बारे में लिखा है, वैकुंठ गुणान वर्णने, है ना, वैकुंठ पति का निरंतर गुणगान करते थे अम्बरीश महाराज। विश्व के सम्राट होने के बावजूद भी उन्होंने अनुभव किया कि हालांकि पूरा साम्राज्य मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, और अगर मैं सुखी हूं तो केवल हरिनाम लेके, वैकुंठ पति का गुणगान करके, वैकुंठ गुणान वर्णने। तो इसलिए ये सब हमें सीखना है, तभी इन शास्त्रों को पढ़ने का कोई फायदा है। ये आठ शीर्षक जो दिया है महाराज ने, आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण, वास्तव में इसमें कोई आर्ट नहीं है, कोई कला नहीं है इसमें, कोई टेक्निक से हम लोग नाम में रुचि नहीं ला सकते हैं। हालांकि ये पुस्तक को, ग्रंथ को, ताकि भक्त लोग पढ़े ये न तेने प्रकार मन कृष्ण निवेश, कि भक्त लोग कम से कम ग्रंथ को खोलेंगे, इस कारण से बड़े दक्षता पूर्वक इसका शीर्षक इस तरह से दिया गया है, आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा जपा मेडिटेशन टेक्निक्स। नहीं, आज के समय में ऐसे शब्द लिखने पड़ते हैं, जपा मेडिटेशन टेक्निक्स, वास्तव में कोई टेक्निक नहीं है, एक ही टेक्निक है इसका, कीर्तनीय सदाहरी, है ना। आप हरिनाम में जा नहीं रहे हो, संख्या आपकी पूरी कर नहीं रहे हो, वो क्या टेक्निक लागू होगा, है ना, कोई टेक्निक लागू होगा हमारे ऊपर, सारे टेक्निक फेल हो जाएंगे। सबसे पहला टेक्निक ये है कि जब संकीर्तन होता है, हरिनाम होता है, और हमारे पास अगर समय है, हम कमरे में बैठे हैं, तो बाहर निकले, सड़क में जाए। अधिकांश जनता लोग कष्ट में है, कोई मंदिर नहीं आना चाहता है, लेकिन हम लोग तो जा सकते हैं उनके पास, मंदिर तो उनके पास जा सकता है भक्तों के माध्यम से। भक्त लोग हरिनाम जब लेके जाते हैं, हरिनाम कीर्तन करके जाते हैं, तो साथ में वो क्या कर रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है कलयुग में। किसके लिए, किसके लिए निकलते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा? हरि नाम का वितरण करने के लिए। स्वयं भगवान को बाहर निकलना पड़ता है अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए। यह है कलयुग की दुर्दशा। लोग इतने ज्यादा डल हो गए हैं स्पिरिचुअली, लोगों का कॉन्शियस डल हो चुका है कि स्वयं जगन्नाथ जी को बाहर आना पड़ता है सड़क में अपनी भक्ति के बारे में प्रचार करने के लिए। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कलयुग में। यह है कलयुग की अवस्था। और उसके बावजूद भी लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करना नहीं चाहते, संकीर्तन में भाग लेना नहीं चाहते। तो कृष्णा महामंत्र यही ते स्वभाव, जय जपे तार तार कृष्ण उपजाए भाव। मतलब ये स्वभाव ही है हरे कृष्ण महामंत्र का, जो इसका जप करेगा तत्काल उसके हृदय में क्या जागृत हो जाएगा, भाव जागृत हो जाएगा, उपजाए भाव। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हम तो रोज ही जप कर रहे हैं, कितने सालों से जप कर रहे हैं, 1990 से हम जप कर रहे हैं, कोई भाव जागृत नहीं। इतने साल हो गए जब करते करते, बल्कि दिन प्रतिदिन जब करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये बड़ी समस्या है। इसमें जब हम जो शास्त्र पढ़ते हैं तो कई बार देखकर हंसी आती है अपने ऊपर। इसमें लिखा कृष्ण राम महामंत्रे ये ते स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। ये स्वभाव है, मतलब हरिनाम का स्वभाव है कि आप से निरंतर जब करेंगे तो क्या होगा, भाव जागृत होगा। कहाँ है वो भाव? अभाव ही है, सिर्फ अभाव है, माया का प्रभाव। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, अगर निरंतर जब करने से भी अगर कोई आकर्षण जागृत नहीं हो रहा है, आभास भी नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब हम सबसे नाम अपराध हो रहा है, नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं लोग। सबूर रस आकार हरि इति द्वि अक्षर सबु भावे करोलोन आश्रय, नाम चरणे पाड़ी भक्ति विनोद कोहे तुवा पदे मागुहु निलोय। ये दो अक्षर ह और री, ये क्या खान है, दिव्य रस के खान है दो अक्षर ह और री, हरि। मतलब भक्ति के जो सारे रस हैं वो इन दो अक्षरों में शामिल हैं। तो नाम के चरण कमल, नाम के चरण कमलों में आश्रय लेकर भक्ति ठाकुर कहते हैं, हे हरि नाम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप आश्रय दें, मैं आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूं, ना आप इनकी शक्ति है। तो इस तरह से जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि पद्म पुराण में बताया गया है, द्वांत्रिम षडक्षरम मंत्रम नाम षोड़श शकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। कोई भी वैष्णव जो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा, जिसमें 16 शब्द हैं और 32 अक्षर हैं, वो राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करेगा ब्रज गोकुल में। हरे कृष्ण महामंत्र ये स्वयं राधा कृष्ण का मंत्र है। हरे यानी कि राधा रानी और कृष्ण यानी कि कृष्ण, और राम भी यहां पर जो राम शब्द है वो भी कृष्ण ही है। राधा रमण, जैसे आपके पंजाबी बाग में राधा रमण, वो हरे राम वहां है, हरे कृष्ण यहाँ है। तो यहाँ वहां के भक्त यहाँ आ गए, यहाँ के भक्त यहाँ पर है, तो महामंत्र पूरा हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग दुखी ना हो, जब राम शब्द का उच्चारण करेंगे तो राधिका रमण का स्मरण करेंगे, और कृष्ण का उच्चारण करेंगे तो ऊपर बैठे हमारा पास। तो इस प्रकार राधा रमण राधाणी को आनंद प्रदान करने वाले, जो राधाणी को आनंद प्रदान करते हैं वो है राधा रमण, है ना? तो कृष्ण राधाणी का नाम ले रहे हैं और राधाणी कृष्ण का नाम ले रही हैं। हमारी संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? और कृष्ण की क्या भावना है, साक्षात स्वयं कृष्ण की क्या भावना है, स्वयं कृष्ण की क्या भावना है, वो निरंतर राधारानी का नाम लेते हैं, है कि नहीं। तो कई बार बोलते हैं लोग फोन पे राधे 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 राधे, राधारानी का नाम लेना बहुत अच्छा है, ब्रज में तो राधारानी का राज्य है, वो ईश्वरी है वहां पर। लेकिन हमने इस पर विचार किया, लेकिन कृष्ण तो सदैव राधारानी का नाम लेते हैं, लेकिन हम तो राधारानी की लाइन में है कि नहीं, हम राधारानी की लाइन में है कि नहीं। हमारा जो ये गौड़िया गौड़िया है, हम लोग गौड़िया राधारानी के भक्त है, है ना, गौड़िया राधारानी के भक्त है। वैष्णव जो है विष्णु के भक्त हैं, वार्ष्णेय कार्ष्णेय भी बोलते हैं कृष्ण के भक्त, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने समझाया है ना। विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं, कृष्ण के भक्त कार्ष्णेय कहलाते हैं, राधारानी के भक्त गौड़िया कहलाते हैं, है कि। तो हम सब राधारानी की लाइन में, तो क्योंकि हम लोग राधारानी की लाइन में हैं और राधारानी की सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात, और कर रहे हैं तो राधारानी तो निरंतर कृष्ण का नाम लेती है। इसी कारण से महापुरुष जो राधारानी के भाव में थे दक्षिण भारत की यात्रा में, वो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। इसलिए हम तो दोनों का ही नाम लेना अच्छा, हमें तो अच्छा लगता है, हरे कृष्ण बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर राधारानी तो कृष्ण का नाम लेती है, हम राधारानी की तरफ, क्योंकि उस दिन कोई फोन में बोल रहा था राधे राधे, हमने कहा हरे कृष्ण। तो ठीक है, आप कृष्ण की तरफ होंगे, हम तो राधारानी की तरफ हैं, हम कृष्ण कृष्ण ही बोलेंगे। और प्रभुपाद ने हमारी संस्था का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब राधारानी सबसे अधिक कृष्ण कॉन्शियस है, इसलिए राधारानी को कृष्णमयी बोला जाता है। ये राधारानी का एक नाम है कृष्णमयी। कृष्णमयी का मतलब पूरा उनका जो स्वरूप है वो कृष्ण भावना से भरा हुआ है, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है वो, उनके चरण से लेकर केश तक वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है। तो हमें भी ऐसी बनना है ना, तो कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा हमें। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि पहले कृष्ण को समझो राधारानी को समझने से पहले, प्रभुपाद का कोट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड कृष्ण देन अंडरस्टैंड राधारानी। यानी कि पहले आप गुरु परंपरा से आगे बढ़ो, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करो, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करो, कृष्ण को पहले समझो, फिर राधारानी को समझ पाएंगे आप। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है, हमें इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए। सतोवृत्ति, सतोवृत्ति का मतलब यही है। तो इस तरह से कई यहां पर उद्धरण दिए हैं, अलग अलग ग्रंथों से नाम की महिमा के बारे में बताया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं पुस्तक से अलग से। अब हम तीसरा अध्याय ले रहे हैं नाम अपराध, जो हमारे लिए है। हरिनाम चिंतामणि में, ये जो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है ठाकुर भक्तिनोद के द्वारा, जितने भी ये चैंटिंग के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, ये सब इसी पुस्तक के ऊपर आधारित है। अगर जो पहली कोई पुस्तक लिखी गई हमारी परंपरा में, बड़े विस्तार से अगर किसी ने लिखा, ठाकुर भक्तिनोद ने लिखा हरिनाम चिंतामणि। ये कहाँ लिखा, जगन्नाथपुरी में, जहाँ पे भक्ति कुटीर है, और जिस स्थान में हमारा अभी इस्कॉन का मंदिर है, जिस स्थान में भक्ति ठाकुर ने भजन किया हरदास ठाकुर की समाधि के सामने, 1903 लगभग 1903 में भक्ति ठाकुर वहां रहते थे, वहां उन्होंने भजन कुटीर बनाया था। एक तो घर था उनका, बाद में घर उन्होंने घर बनाया था जब वो चीफ मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में, उनका परिवार भी था, और उससे पहले उनका भजन कुटीर भी था वहां पर स्वर्गद्वार में, हरिदास ठाकुर की समाधि के बिल्कुल सामने भजन कुटीर भक्ति ठाकुर का, और उसी स्थान में वो जमीन हमें मिल गई, तो उसी स्थान में हमने मंदिर बनाया। तो वो एक मंदिर है जहां पर प्रभुपाद जी का शिव विग्रह तो है ही, और साथ में भक्ति ठाकुर भी बैठे हैं, भक्ति ठाकुर के साथ बैठे हैं प्रभुपाद, आपने देखा होगा। तो वो स्थान है जहां भक्ति ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ लिखा, क्योंकि हरिनाम के बारे में चर्चा हो और हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के बारे में ना बताएं ये ठीक नहीं है। ये जो हरिनाम चिंतामणि है ग्रंथ, इसमें नाम की महिमा के बारे में, नाम अपराध के बारे में, नाना प्रकार के नामाभास के बारे में और शुद्ध नाम के बारे में भक्ति ठाकुर ने चर्चा की है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया भक्ति ठाकुर ने नाम तत्व के बारे में। तो ये सारी किताबें ग्रंथ जो है भक्ति ठाकुर के ग्रंथ के ऊपर आधारित है और अन्य शास्त्रों से भी यहाँ उदाहरण प्राप्त हो रहा है। नाम अपराध, नाम अपराध का मतलब है कि जब निरंतर हृदय में शत्रुता बना लेते हैं, नाम को शत्रु बना लेते हैं, यानी कि नाम को अपना जब शत्रु बना लेते हैं निरंतर रूप से, यानी कि अच्छी तरह से पूरे सचेत होकर हम लोग शत्रु बना लेते हैं नाम, अंधकार छाया हुआ है चारों तरफ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, वो है नाम अपराध। जैसे जब अंग्रेज लोग भेज देते थे किसी को दंड देना होता था तो वो भेजते थे साउथ इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड्स में काला पानी, वो काला पानी में डाल देते थे कमरे के अंदर काल खोटरी में, और वो कमरे में रोशनी तक नहीं आती, आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा अंदर, और अंदर थाली फेंक देंगे वो खाने के लिए बस थोड़ा बहुत, वहीं रहना बस पूरे दिन आपको बंद करके रख देंगे, उसको कहते काला पानी। अभी है कि नहीं पता नहीं। तो ये काला पानी ये है नाम अपराध, अंधेरा, आपको नाम का आभास भी नहीं हो रहा है, शुद्ध नाम का आभास भी नहीं हो रहा है, बस जब की संख्या पूरी कर रहे हैं आप, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, माला पूरी हो गई, चलो जी चलो ठीक है ना, साइड में रखो इसको, और बीटबैक का स्मरण कब होता है अगले दिन, 16 माला हो गई, इसका मतलब क्या है, अब मेरा जप माला से कोई भी मतलब नहीं है ना, बहुत बड़ा टेंशन दूर हुआ है ना, कहां फंस गया था मैं। तो इस प्रकार संघर्ष करता है ऐसा प्राकृत भक्त जो है, और ये सबसे निकृष्ट स्तर का जप है ना, और यानी कि इस नाम अपराध की अवस्था में प्राकृत भक्त जो है वो क्या करता है, नाम अपराध करता है। 10 प्रकार के जो नाम अपराध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो 10 प्रकार के नाम अपराध में से कोई भी एक नाम अपराध करे तो फिर क्या होगा, नाम अपराध माना जाएगा। तो जब तक हम नाम अपराध करेंगे असंभव है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, असंभव है, संभव। अप का मतलब होता है कि किसी के विरोध में जाते हैं हम, और राध का मतलब है सफलता, स्नेह, सफलता, किसी के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं राध। और जब हम लोग नाम को प्रसन्न नहीं करते हैं, हरि नाम को प्रसन्न नहीं करते हैं तो उसको नाम अपराध कहते हैं। नाम का जप कर रहे हैं लेकिन नाम के विरुद्ध ही चले गए, नाम ले रहे हैं जिनका उनके ही विरोध चले गए तो हो गया ना अपराध, है ना। मतलब तो जिनका नाम दिन रात लेते हो उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं की निंदा करते हो, बोलते ना कई बार, तो वैसे ही है। और दूसरे शब्दों में कहने का अर्थ है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, और इस प्रकार जब तक नाम अपराध होता रहेगा हम भक्ति के स्तर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कई बार प्रश्न लोग पूछते हैं प्रभु श्रद्धा से हम प्रेम तक कैसे पहुंच पाएंगे, हम तो श्रद्धा के स्तर पर ही हैं, साधु संग तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, कई साल हो गए भजन क्रिया करते हुए, अनर्थों की निवृत्ति तो हो ही नहीं रही है, तो अनर्थों की निवृत्ति कैसे होगी जब तक हम लोग नाम अपराध करते रहेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो कई आचार्यों का ये भी कहना है कि अपराध का अर्थ क्या है, अपराध का मतलब जिसमें राधा रानी नहीं है, आपका मतलब बिना और रात का मतलब राधा रानी, तो जिस नाम में राधा रानी नहीं है यानी कि राधारानी को आपने विशेष आदर सम्मान नहीं दिया, उनकी सेवा नहीं की आपने, तो अपराध हो गया ना। तो ऐसा भी कुछ आचार्य लोग कहते हैं। और लेकिन ठाकुर भक्तिनोद ने जैव धर्म में बताया है कि दो प्रकार की बाधाएं होती हैं, दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक छोटा होता है माइनर होता है और एक होता है मेजर, माइनर ऑफेंसेस एंड मेजर ऑफेंसेस। और अगर छोटा सा अपराध होता है तो फिर क्या होता है, उसको नामाभास कहते हैं और कुछ समय के बाद उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा अपराध अगर हम कर बैठते हैं, बहुत बड़ी बाधा आ जाती है, तो ऐसा नाम जो है वो नाम अपराध बन जाता है। और ऐसा नाम अपराध से हम तभी बच सकते हैं जब निरंतर नामों का उच्चारण करें। निरंतर नामों का उच्चारण करना ही एक उपाय है नाम अपराध से बचने का। यानी कि ये जो नाम अपराध दिए गए हैं पद्म पुराण में, इन नाम अपराधों से बहुत सावधानी से बचना पड़ेगा, बहुत सावधानी से बचना पड़ेगा, तब हम लोग जाके नाम का आभास कर पाएंगे, शुद्ध नाम का आभास कर पाएंगे। तो यहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का एक कोट दिया गया है, बड़ा सुंदर बताया गया है। इससे पहले एक और जगह पर नाम कौमुदी नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के पांचवें अध्याय के 23वें श्लोक के तात्पर्य में दिया है। प्रभुपाद ने बोला, कोई अगर वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो वैष्णव से जाकर क्षमा मांग लीजिए। इसी तरह से कोई नाम अपराध करता है तो हरिनाम प्रभु से जाकर क्षमा मांग लीजिए। यह अपराध से बचने का एक तरीका। तो शुरू में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये कहते हैं कि हम लोग कई प्रकार के अनर्थों से गुजरते हैं, हरिनाम लेते हुए हमारा मन विचलित होता है, विषय विकारों में जाता है ना, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं है, हरिनाम लेते रहना है, क्योंकि हरिनाम शुद्ध करेगा हमें। जब कपड़ा गंदा होता है तो गंदगी बाहर निकलेगी, लेकिन धोना बंद नहीं करना आपको। इसी तरह से हरिनाम निरंतर हमें लेते रहना होगा। और यहां भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी बताया है कि अपराध जो है वो लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है पाप से। एक पापी से पापी व्यक्ति भी हरिनाम ले सकता है, उसके लिए और कोई अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी हरिनाम ले सकता है और जल्द ही वो शुद्ध भी हो जाएगा, पाप करना बंद कर देगा। लेकिन अपराध जो है वो लाखों गुना ज्यादा खतरनाक होता है पाप से। तो इसलिए अपराधों के कारण जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते हम भक्ति में। और कई बार तो क्योंकि हम इन सब की चर्चा नहीं करते हैं। ये देखिए, इन सिद्धांतों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। वैश्विक समाज में होता क्या है, कई बार जब हम प्राकृत अवस्था में होते हैं खासकर, तो होता यह है कि हम लोग क्योंकि इतनी सारी सेवाओं में लगे रहते हैं, हमारा आंदोलन है तो हम नाना प्रकार की सेवा में लगे हैं। कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, कोई विग्रह की सेवा में लगा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई फूड फॉर लाइफ हो रहा है, कोई मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है, नाना प्रकार की सेवाएं। और प्रभुपाद की वास्तविक कृपा है, प्रभुपाद ने इतनी सारी सेवाएं दी हैं क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं, क्योंकि हमेशा हम हरिनाम ले नहीं सकते, हम लोग लायक नहीं है, है कि नहीं, हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें नाना प्रकार की सेवाएं दी है, कम से कम हमारा मन तो लगा रहे, सीधे नहीं तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से हम कृष्ण की सेवा में जुड़े रहे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः शुद्धिकरण होगा और हम लोग फिर सदा हरि नाम लेने में सक्षम हो जाएंगे। इस कारण से प्रभुपाद ने व्यवस्था की, नाना प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था की। परीक्षित महाराज की तरह हम लोग 7 दिन 7 रात तो श्रवण नहीं कर सकते, ना सुखदेव गोस्वामी की तरह 7 दिन 7 रात बोल सकते हैं, यहां तो बार बार हम लोग पानी पीते रहते हैं, आवश्यकता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि हम सब देहात्म बुद्धि में। सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे, उनको तो जल के बारे में स्मरण भी नहीं हो रहा था, भोजन के बारे में तो स्मरण नहीं हो रहा था। निद्राहार विहार कार्य विजितो चात्यंत दीन चयो, है ना, षट गोस्वामी के बारे में लिखा जाता है। निद्राहार के ऊपर विजय पाली, कैसे विजय पाई उन्होंने, लड़ाई करने थोड़े गए थे निद्रा के साथ। निद्रा देवी आओ, उठाओ अपना शास्त्र, आक्रमण करो, का हो आहार। षट गोस्वामियों में क्या था, नाम के प्रति रुचि थी, नाम के प्रति क्योंकि रुचि थी इसलिए सांसारिक आकर्षण समाप्त हो गया। देहात्मक, देहात्मक जो आवश्यकता है, देह की जो आवश्यकताएं हैं वो शून्य हो गई, शून्य, डिजायरलेस, अन्य अभिलाषिता शून्यम। क्यों शून्य हो गई, क्योंकि नाम के प्रति रुचि है, नाम में जो रुचि नहीं होगी तो शून्य कहां से होगा। फिर तो हम भोजन का ही चिंतन करेंगे तो कर भाजन के बदले हम उधर भाजन बन जाते हैं, उधर भाजन, है ना, उधर भाजन। तो इसलिए फिर नाम का आभास कभी होता नहीं है। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज चौथे दिन बोल रहे हैं, पहले दिन उन्होंने क्या बोला, जो मरणासन व्यक्ति है, जो मृत्यु के निकट है, उनको किसका ध्यान लगाना चाहिए, किन नामों का जप करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए जो मृत्यु के निकट है, क्योंकि जो प्राकृत अवस्था में अक्सर यही प्रश्न पूछते। लेकिन चौथे दिन परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया, कथामृत का जो आप पान करा रहे हैं, अब ये भूख प्यास मुझे नहीं सता रही है, आप बस बोल तो जाइए, बस रुकिए नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज, महाराज आप कुछ ले लीजिए, जल ग्रहण कर लीजिए, गंगा जी निकट है, कुछ फल फूल इत्यादि ले लीजिए, आपको भूख लगी होगी, पिछले चार दिन से आप कथा सुन रहे हैं। उनका नहीं, आप जो कथामृत का पान करा रहे हैं बस वही पर्याप्त है, आप रुकिए नहीं, बस आप बोलते जाइए, हाँ आप रुक जाएंगे तो शायद फिर मुझे भूख लगेगी, लेकिन जब आप कथामृत का पान कराते हैं तो फिर मुझे चिंता ही नहीं होती है, मुझे तो याद ही नहीं रहता है, भारी सुदबुद्धि नहीं होती है। और अगर ये आप कृष्ण के बारे में बताने वाले हैं, आप कृष्ण के बारे में आप विस्तार से बताएं, ऐसे नहीं कि पिछले अवतारों के बारे में जो आपने वर्णन किया कहीं तो दो श्लोकों में बता दिया, और भगवान राम का चरित्र सुनाया दो अध्याय में, कई अवतारों का वर्णन आपने कुछ ही पंक्तियों में कुछ श्लोकों में कर दिया, आप कृष्ण के बारे में बताने जा रहे हैं तो यहां पर कंजूसी ना करें, क्योंकि जैसे ही उनको लगा पता चला कि कृष्ण के बारे में बताने वाले हैं तो परीक्षित महाराज जो है भाव में आ गए, है ना। ये परीक्षित महाराज ने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया था माता उत्तरा के गर्भ में, और इस कारण से उनका स्वाभाविक आकर्षण था परीक्षित महाराज का कृष्ण के प्रति। परीक्षित का मतलब यह है कि वो परख रहे थे, कौन है वो व्यक्ति जिसको मैंने देखा था माता के घर में, ये तो नहीं है वो कृष्ण, ये तो नहीं है कृष्ण, ये तो नहीं है कृष्ण। शिवदेव गोस्वामी का जो उनकी कांति थी वो भी श्याम वर्ण की थी, कृष्ण जैसा ही उनका स्वरूप था, उद्धव जी का भी ऐसा ही स्वरूप था, देखने में श्याम वर्ण के थे, देखने में ऐसे लगते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि परीक्षित महाराज चौथे दिन ये कह रहे हैं कि बस आप सुनाते रहिए। निवृत्त तर्शेर उपगीय महाराज भव सदा श्रोत्र मनोभिरामान का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विजय बिना पशु ना। जो पशु खाती है, आत्मा गहन करने वाले हैं, उनकी ही रुचि नहीं होती है कृष्ण कथा में, यानी कहने का अर्थ क्या है, नाम रुचि किसकी नहीं होती है, जो आत्मा का हनन करने वाले हमसे आत्मघाती है, आत्मघाती, आत्मघाती, चलो पशु घाती तो नहीं है, पशु की हत्या तो नहीं करते हम, लेकिन आत्मघाती निश्चित रूप से है। आत्मघाती का मतलब है देहात्मक बुद्धि में हमें केवल देह की चिंता है, दिन रात कब इसको खिलाएंगे, कब इसको पहनाएंगे, कब इसको खुश, कैसे खुश रखें इस शरीर को, शरीर की चिंता हो रही है दिन रात बस। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि नाम अपराधों से बचा ही नहीं जा सकता है, नाम के प्रति रुचि जागृति नहीं होगी जब तक देहात्मक बुद्धि बनी रही हो। और गुरु यही कार्य करते हैं शिष्य के ऊपर, गुरु शिष्य को देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठाते हैं, क्योंकि शिष्य बहुत ज्यादा आसक्त होता है, जो शरीर से आसक्त होता है, देह से आसक्त होता है, वो नाम भजन में उसका कभी आकर्षण जागृत नहीं हो सकता। इसलिए गुरु उसके देहात्मक बुद्धि को नष्ट करते हैं। और देहात्मक बुद्धि को नष्ट करने के लिए साधक को चाहिए कि वो तपस्या करे, शारीरिक कष्ट उठाना पड़े भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सद्वम शुद्धे अस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। प्रातः काल उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त के समय गुणगान करना पड़ेगा भगवान का। ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, जगह एक जगह बैठ के जप करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भजन करने के लिए स्थान चुनना बहुत जरूरी है। ये नहीं हर जिस दिन जो है स्थान बदल रहे हैं, कभी सोफा में बैठ गए, कभी जमीन में बैठ गए, कभी लॉन में बैठे हैं, कभी सड़क में चले गए, कभी छत पे बैठे हैं, रोज ही बदल रहे हैं स्थान। इसका मतलब हम लोग योग साधना में गंभीर नहीं है। आप देखिए षट गोस्वामियों को देखिए, द्वादश वनों में भटक रहे थे, लेकिन जिन वनों में भी वो गए उन सब का भजन कुटीर का वही स्थान होता था। जैसे शिल रूप गोस्वामी जाते हैं नंदगांव की तरफ तो टेर कदम के नीचे ही वहां पर बैठते, और सेवा कुंज में आते तो वहां सेवा कुंज में ही उनका भजन कुटीर होता है कि नहीं, उसी स्थान में। तभी तो उसी स्थान में भजन कुटीर बनाया है, ऐसे थोड़ा ना कि सेवा कुंज में चार जगह बना दिया भजन कुटीर, उसी स्थान में भजन कुटीर है उनका। सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर उसी स्थान में है, सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर गोकुल में भी है, सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर मानसी गंगा में भी है। लेकिन ये सब स्थान निर्धारित स्थान है, और हर साधक जानते थे कि ये सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, और कभी भी आएंगे तो उस स्थान में और कोई साधक नहीं आता था बैठने के लिए। ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, ये श्रीपाद श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर का भजन कुटीर है, जैसे राधा कुंड में है ना, आप लोगों ने देखा होगा। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी वहीं पे भजन कुटीर है राधा कुंड में। तो इन सब का निर्धारित स्थान होता था। प्रभुपाद जी का भी भजन कुटीर निर्धारित है कि नहीं, जहां जहां जाएंगे प्रभुपाद उसी स्थान में रहते हैं। सेवा कुंड में भी देखिए प्रभुपाद जब जाते थे तो उसी कक्ष में जा रहे हैं भजन करने। हाँ वो बात अलग है कि रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जाते थे प्रणाम करने, वहां पर कीर्तन करने, वो अलग बात है। लेकिन उनका अपने व्यक्तिगत भजन का जो स्थान है वो निर्धारित होता है। वर्तमान वैष्णव आचार्यों को भी देखें आप, हमारे गुरु महाराज या अन्य किसी भी वैष्णव को देखें, वो जब जप करते हैं वो उसी स्थान में बैठते हैं, वो नहीं रोज जगह बदल रहे हैं। आज चलो वहां लगाओ आसन मेरा प्रभुपाद के पास, आज वहां लगाओ आसन राम दरबार के पास, है ना। इसका मतलब क्या है, ऐसे साधक जिनका मन स्थिर नहीं है यह अस्थिरता व्यक्त करता है। अगर एक साधक का मन स्थिर नहीं है, मन किसका कितना चंचल है उसकी साधना से पता चल जाएगा। कौन सा वक्त आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है या नहीं है वो जब के समय पता चलता है। मंगल आरती में तो खंभे भी खड़े हैं, मंगल आरती में तो खंभे भी खड़े होते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब का समय ऐसा समय होता है जिससे साबित हो जाता है कि ये भक्त गंभीर है या नहीं। तो गंभीर नहीं है वह बाहर चले जाते हैं गरुड़ जी के पास, गर्मी है, अच्छी आवाज चल रही है, यहाँ जब भी अच्छा होगा, अंदर नींद आ रही थी मुझे इसलिए मैं बाहर आ गया। अच्छा बाहर आ गए, दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल वैसा ही है उसने देखा, अरे ये तो बाहर खड़ा है, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, तो वो भी बाहर चला जाता है। दोनों मिलके चर्चा करते हैं दफ्तर के बारे में, घर के बारे में, संसार की सारी चर्चाएं होती है, हाथ में माला भी चल रही है ना। साक्षात राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं आप, है ना, हरि नाम प्रभु आपके साथ में है, और आप आपको लगता है और भी ज्यादा गंभीर विषय है आपके पास संसार का, है ना। इसका मतलब धाम जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे नाम को भुक्ति नाम कहते हैं, भोग नाम, भुक्ति नाम, नाम अपराध। तो क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे ही लोग ढूंढते हैं, है कि नहीं। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बोलते हैं ना अंग्रेजी में कहावत। तो देखते हैं कि दो लोग खड़े हैं बाहर बातचीत कर रहे हैं, हम भी चलते हैं। कुछ लोगों की आदत है चलते चलते जब करना, ठीक है अगर जब कर रहे हैं तो, लेकिन साथ में बातचीत भी हो रही है ना, और माला भी चल रहा है साथ में, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से उन्नति की आवश्यकता है कि जब भी चल रहा है और बातें भी चल रही हैं, गप भी चल रहा है, जप और गप साथ साथ है ना, जप गप गप जप जप गप गप जप जप गप गप जप जप गप, उतने में दर्शन आरती का समय होता है। गोविंदम आदि पुरुषम हम हम बजामी, फिर जैसे दर्शन आरती समाप्त होता है, पता तुम्हें क्या हुआ, सामने ठाकुर जी खड़े, वहीं बातें शुरू हो गई। जहां जहां मौका मिलता है ऐसे तथाकथित साधक जो है वो फालतू की बातें शुरू कर देते। इसका मतलब ऐसे साधक भजन में गंभीर नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनकी सेवाओं से, उनके साधना का पता चल जाता है। जब व्यक्ति बोलने लगेगा, अपने व्यवहार प्रकट करने लगेगा अन्य भक्तों में, पता चल जाएगा कि साधना की रेटिंग क्या है। साधना चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है उन्नत वैष्णवों को। जब उत्तम वैष्णव जो होते हैं अपने शिष्यों को या प्राकृत भक्तों को देखते हैं तो उनके कार्यकलाप और उनके गतिविधियों को देखकर ही, उनकी बोलचाल से ही पता लगा लेंगे, उनके चेहरे को देख के पता चल लग जाएगा कि ये जप ही नहीं कर रहा है। हमें याद एक बार ऐसा हुआ था, एक भक्त था हमारे गुरु भाई थे, तो वो महाराज से मिलने गए, तो महाराज ने कहा तुम्हारा जप ठीक हो रहा है, डब मेरे ख्याल से जप ठीक नहीं हो रहा तुम्हारा, महाराज ने कहा उसको, महाराज देख के बोल दिया। तो बाद में उस वक्त मुझे बताया, प्रभु जी पता नहीं महाराज को कैसे पता लग गया, कुछ दिनों से मेरा वास्तव में जब ठीक नहीं हो रहा, मेरी संख्या पूरी नहीं हो रही थी, चैंटिंग पूरी नहीं कर रहा था। तो हमारे से गुरु महाराज हैं, ऐसे कई वैष्णव हैं, वो चेहरा देखकर बता देंगे आपको कि ये जप नहीं कर रहा है ना। तो जैसे एक भक्त आया था, आपको बताते हैं असली घटना। तो वो आया तो महाराज ने कहा कि तुम आजकल मंदिर नहीं आते, तो नहीं महाराज मैं आता हूँ मंदिर, ऐसी तो कोई बात नहीं। महाराज कहते तुम माया में हो, तो फिर वो बोलता नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आता हूँ मंदिर दर्शन करने आता हूँ। महाराज कहते मैं कह रहा हूँ ना तुम माया में हो, तो महाराज बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि तुम माया में हो, तो कौन ऐसे बोल सकता बताइए, है ना। जिसने साधना की है कई सालों तक, जिसने भजन अपने भजन को पकाया है, वास्तव में जिसका भजन पका होता है वो बाहर दिखावा नहीं करता भक्ति का, लेकिन प्राकृत अवस्था में हम देखते हैं जिनका भजन कुछ है ही नहीं, साधना कुछ है ही नहीं, वही बातें कर रहे हैं, बाती सब दुनिया भर की ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, वो सीधा पहुंच जाते हैं राधा कृष्ण की लीला में, जब तो हो नहीं रहा उनसे, जब के समय निद्रा लोग में प्रवेश कर जाते हैं, और जब बातें करते हैं तो ब्रज की बात सीधा, वो भी राधा कृष्ण की लीला है ना। हम सब राग मार्गी हैं, ठीक है हम सब राग मार्गी हो, हमें बनना है, लेकिन अभी तो नहीं हो ना फिलहाल, अभी जिस दवा की आवश्यकता वो दवा तो लो, वो दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो बिना साधना के साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, इतना आसान नहीं है राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना, इतना आसान नहीं है ब्रज में प्रवेश करना, इतना आसान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा ना हो तो कलयुग में राधा कृष्ण की सेवा करना लगभग असंभव है, असंभव है राधा कृष्ण की सेवा अगर महाप्रभु पंच तत्व की कृपा ना हो तो। केवल महाप्रभु क्योंकि आए इसलिए महाप्रभु की कृपा से, पंच तत्व की कृपा से कोई ब्रज में प्रवेश कर पाता है, अन्यथा संभव नहीं है कलयुग में राधा कृष्ण की सेवा। लेकिन सीधे लोग पहुंच जाते हैं ब्रज में, और वहां जाके फिर नाम अपराध करते हैं, धाम अपराध करते हैं, ब्रजवासियों के प्रति अपराध करते हैं, फिर अगले जन्म में आपको शुकर कुकर बनना पड़ेगा, वहीं घूमेंगे जंगल में सुअर बन के गटर में, या बंदर बन जाएंगे। तो ये नाम अपराध बहुत खतरनाक होता है, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो इस प्रकार यहां पे ये नाम अपराध के बारे में चर्चा की गई है, इफेक्ट्स ऑफ नाम अपराध, नाम अपराध का क्या प्रभाव पड़ता है। नाम अपराध करने से साधन भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण और जो टेस्ट है, रुचि है, जो भी रहा है, रुचि तो रही नहीं लेकिन जो भी आकर्षण रहा है वो समाप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में यानी कि श्रवण कीर्तन से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख नहीं प्राप्त होता, साधु संघ से वैष्णव सेवा से जो सुख प्राप्त होता है उसको सुख नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हमसे निरंतर नाम अपराध हो रहा है। जैसे कि पहली बार हम जो वृंदावन गए थे आप सबको याद होगा, और यहाँ भी आप ही लोग गए होंगे, आप सबका भी अनुभव होगा कि कितना आनंद आया होगा आपको जब पहली बार आप गए थे धाम। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगा बताइए जब पहली बार गए थे? सबको अच्छा लगा, और अब कितना अच्छा लग रहा है? अब कितने लोगों को उतना ही अच्छा लग रहा है जितना पहली बार लग रहा था? हाथ खड़ा करिए, क्यों नहीं उठा रहे हाथ? तो पहली बार जो आप गए थे वो था नाम आभास, अभी जो आप जा रहे हैं वो हो रहा है हमसे नाम अपराध, इसलिए वापस उसी स्थान में आ गए हम दिल्ली वृंदावन में, इसी कारण से हम लोग नहीं रह पाते, है ना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विषया छाड़िए, क्या है, कभी शुद्ध होवे मन कभी हमा भुजो बोसे श्री वृंदावन। हाँ, ये किसने बोला? नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इससे पहले गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करें, महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ एक दिन पहले मंदिर का मार्जन करते हैं, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी पहुंचते हैं तभी सफाई शुरू होती है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक चित्त के दर्पण की सफाई नहीं हो जाएगी, लीलाओं की स्फूर्ति नहीं होने वाली। पहले मन को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि साफ मन में ही कृष्ण आके बैठने वाले हैं। गंदे स्थान में आप ठाकुर जी को नहीं बिठा सकते, और हमारा मन कितना गंदा है वातावरण से पता चल जाता है, अपने आचरण से पता चल जाता है। तो इसलिए पहले मन की सफाई करनी पड़ेगी। और जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति जो है जब वो इलाज करा लेता है और दोबारा फिर उसकी रुचि जागृत हो जाती है स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति, इसी तरह से जब कोई इस प्रकार का अपराधी है वो निरंतर हरिनाम लेता है तो क्या होता है, वो फिर नाम अपराधों से बचने लगता है और नाम के प्रति पुनः आकर्षण जागृत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाम का जब किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं है, भले आकर्षण जागृत हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद हम तो जब करते हैं माया का स्मरण होता है, विषयों का चिंतन होता है, क्या करें हम? तो प्रभुपाद ने कहा हरि नाम लेते रहो, विषयों का चिंतन होने दो, हरि नाम लेते रहो, विषयों का चिंतन होने दो, अंत में किसकी विजय होगी? हरि नाम की विजय होगी। लेकिन अगर हरि नाम लेना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? माया की विजय हो जाएगी। ये बहुत ध्यान रखना है बात। और पद्म पुराण से स्वर्ग खंड में दिया है नाम अपराध युक्ता नाम नामनी एव हरंति अघम अभिश्रांति प्रयुक्तानी तानी एवार्थ कराणी च। बाय कंटिन्यूअस चैंटिंग एन ऑफेंडर टू द होली नेम विल ग्रेजुअली बिकम फ्री फ्रॉम सिंस एंड ऑफेंसेस, यू विल राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफेंसलेस चैंटिंग एंड इवेंचुअली अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कृष्ण प्रेम। निरंतर हरिनाम लेने से क्या होगा, हम लोग समस्त प्रकार के पापों से अपराधों से छुटकारा पाएंगे और अपराध रहित हो जाएंगे और अंततः जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। पद्म पुराण में दिया है ये शास्त्र का वर्णन है, शास्त्र प्रमाण। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है, और हम सब क्योंकि बद्ध अवस्था में हैं तो निश्चित रूप से हमसे गलतियां होती हैं और गलतियां होती रहेंगी, लेकिन इससे बचने का तरीका है बार बार हरिनाम लेना, निरंतर हरिनाम लेना। संख्या पूरी हो जाए और आपके पास कोई सेवा नहीं है, प्रचार भी कर लिया आपने, अन्य सेवाएं भी कर ली, फिर भी आपके समय बचा है, तो सबसे उत्तम कार्य क्या है? हरिनाम लेना। हाँ ये बात है, लेकिन नई संख्या अगर आप दोबारा निर्धारित करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा हो रही है, ठीक है, हमें बताया प्रभु जी ने कि अधिक से अधिक हरिनाम लेना चाहिए निरंतर, कल से हम 25 माला करेंगे, कोई कहेगा हम परसों से 32 माला करेंगे, कोई कहेगा 64 माला करेंगे। इसके लिए गुरु से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, संख्या अगर आपको निर्धारित करना है तो। लेकिन हरिनाम लेने के लिए, निरंतर हरिनाम लेने के लिए, वो तो गुरु अनुमति दे ही चुके हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहां से आप जा रहे हैं पंजाबी बाग, ठीक है, आप गाड़ी में खाली बैठे तो माला करते हो जाइए, संख्या नहीं निर्धारित की आपने, लेकिन पंजाबी बाग जा रहे हैं तो दूर है ना, डेढ़ दो घंटा लग जाएगा, तो जब करते हुए जाए। यहाँ से आप जा रहे हैं बहुत दूर, ट्रेन में जा रहे हैं, दो दिन का सफर है, खाली बैठे हैं, दो घंटा दिन कर लेंगे, तीन घंटा दिन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? और खासकर आप अकेले हैं तो सबसे उत्तम क्या है? एक ही सहारा हरि नाम का, माला करते जाए। ऐसे में आप माला कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन संख्या अगर निर्धारित करनी है तो गुरु से अनुमति लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संख्या जो है वो गुरु ने आपके लिए फिक्स किया हुआ है, तो गुरु से परामर्श करना जरूरी है इस बारे में। तो इस प्रकार ये नाम अपराध, accumulation of sins for नाम अपराध is even more dreadful than the result of committing five महापाप millions of times, because one can easily estimate the dire results of नाम अपराध, yet there are some good results. One who commits offenses to the holy name and one who takes the name with a wicked mentality will get the following results. In the beginning, Namaprathi chants the name with a wicked mentality, but after some time, he occasionally chants the name free from wickedness. मतलब नाम अपराध से हमें क्या नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इसे अलग अलग नाम अपराध बताए गए, भुक्ति नाम, मुक्ति नाम, ये सब नाम अपराध है। मुक्ति के लिए कोई नाम ले रहा है या भुक्ति के लिए कोई नाम ले रहा है ना? तो अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, दुष्ट बुद्धि से कोई हरिनाम लेता है, तो उस प्रकार फिर उसको फल भी प्राप्त होगा, है ना, उसका हनन होगा। लेकिन कोई अगर बिना इसके दुष्ट प्रवृत्ति के हरिनाम ले रहा है, तो धीरे धीरे ये सुकृति बढ़ाएगा और हम लोग साधु संघ के माध्यम से शुद्ध भक्तों की कृपा से हम लोग हरिनाम ले पाएंगे, शुद्ध नाम ले पाएंगे। और ऐसे भक्तों के संघ से क्या होता है, ऐसे शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहकर जब हरिनाम लेंगे तो जल्दी हम इस नाम अपराधों से बच पाएंगे। एक उत्तम तरीका यह भी है कि हम अधिक से अधिक शुद्ध भक्तों से हरिनाम सुने, ये बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाल ने स्वयं बोला है हरे कृष्ण कीर्तन धुन में, दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र मस्ट बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी, बोला प्रभुपाल, है कि नहीं? तो बोलेंगे हम भी तो नाम लेते हैं, और प्रभुपाल के नाम लेने में क्या अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है कि नहीं? शुद्ध सत्व की अवस्था में वो नाम ले रहे हैं, शुद्ध नाम ले रहे हैं, हमारे कर्ण रंध्रों से शुद्ध नाम प्रवेश करेगा, हमारे हृदय को वो जल पवित्र बनाएगा, और जितना अधिक हमारा हृदय पवित्र होगा हम लोग भी अच्छी तरह से हरि नाम ले पाए। तो प्रभुपाद का जप चला के, प्रभुपाद जी का चैंटिंग चला के साथ में जप कर सकते हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है। तुलसी महारानी के समक्ष बैठ कर जप करें, उससे बड़ा लाभ मिलता है। राधा कृष्ण के विग्रह के समक्ष, डीटीज के सामने बैठकर या उनके पिक्चर के समक्ष बैठ के जप करें, बहुत लाभ मिलेगा। भक्तों के संग में बैठकर जप करें, बहुत लाभ मिलेगा, आपको निद्रा से बचाएंगे, आपको बाहर जाने से रोकेंगे, आपको पकड़ के बिठाएंगे एक जगह, है ना। तो इस तरह से हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भक्तों से सहायता मिलती है जब, तो फिर धीरे धीरे हमारा जप जो है वो जब में सुधार आएगा। लेकिन जब करना नहीं छोड़ना है किसी अवस्था में, है ना, क्योंकि कई बार होता है भक्त लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, उस अवस्था में भी जब नहीं छोड़ना है, बोलते मैं बहुत बीमार हूं इसलिए मैंने 16 माला नहीं किया आज, इसका मतलब यह है कि मृत्यु के समय भी आप नाम नहीं ले पाओगे, ये साबित कर दिया आपने आज, क्योंकि आज आप बुखार की वजह से जप करना छोड़ दिए, इसका जीवन के अंत काल में जब मृत्यु निकट आएगी तो आप माला, तो आपको माला का स्मरण ही नहीं होगा। जब आपने अभी जप नहीं कर पाए तो तब कैसे कर पाओगे। इसलिए तो हमारे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, तत्तेनुकंपान सुसमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में कितना भी कष्ट आए लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ता है, ऐसा भक्त जो भक्ति नहीं छोड़ता है, हर अवस्था में सेवा करता रहता है, हरि नाम लेता रहता है, तो जीवन के अंत काल में वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, भगवान के चरणों का आश्रय उसको मिल जाता है। यही गीता में भगवान कह रहे हैं, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतिहेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कौन गुणों को पार कर सकता है, इन तीन गुणों को कौन पार कर सकता है, प्रकृति के तीन गुणों को कौन पार कर सकता है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है और किसी भी परिस्थिति में वो सेवा नहीं बंद करता। और सबसे उत्तम सेवा क्या है, हरि नाम। कोई और सेवा नहीं कर सकते तो हरि नाम तो ले ही सकते हो, और अगर आपकी आवाज बंद भी हो गई तो मुंह हिलाकर भी आप हरिनाम ले सकते हैं, कि तीन प्रकार के जप तो है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप, जैसे हमने बताया पहले। तो होंठ को हिलाते हुए आप हरिनाम ले सकते हैं, लेकिन हरिनाम लेना बंद नहीं करना है कभी भी। हमें कितने भी हम बीमार हो जाए, टाइफाइड हो जाए, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, हार्ट पेशेंट हो जाए, हॉस्पिटल में पड़े हो, उल्टे लटके हो, पाँव ऊपर, जैसे कई बार आपने देखा होगा मूवी से, पाँव ऊपर लटका हुआ है, सर पूरा बांधा, पट्टी डाली हुई है ना, हाथ भी इधर उधर है, लेकिन अगर आप क्या मुंह हिल सकता है तो आप हरिनाम ले सकते हैं। ये है टेस्टिंग, ये होगी परीक्षा। भीष्म पितामह की तरह बाणों की शैया में लेटे हैं, फिर भी पांडवों को संदेश दे रहे हैं, तो भगवान दिखाना चाह रहे हैं, ये देखो ये है मेरा भक्त, इतने कष्ट में है फिर भी हरिनाम ले रहा है। हरदास ठाकुर को देखो, 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, लेकिन बोल रहे खंड खंड कर दो मेरा शरीर, खंड खंड कर दो, लेकिन हरिनाम नहीं लेना छोड़ूंगा मैं। तो यहां छोटी सी बीमारी आती है, माला में नजर नहीं आती है ना, तो ये है दुर्दैव में दृश्यम यहा जनिना अनुराग। तो रुग्ण अवस्था से बाहर निकलना, इसी को कहते हैं देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना। शरीर तो आपको कष्ट देगा ही, कलयुग में बीमारियां तो लगेगी ही, सच्चिदानंद विग्रह नहीं है हमारा शरीर, इस शरीर से आप आशा मत करो कुछ, ये शरीर आपको केवल दुख देगा, सुख नहीं देगा, ये शरीर द्वंद से भरा हुआ है, और इस द्वंद से बाहर अगर निकलना है तो मन की बात नहीं सुननी है, गुरु की बात सुननी है। जब ऐसा करेंगे तब देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ पाएंगे। पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, पांव में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, बीमारियां लगी हुई हैं, सबको लगी हुई है। बाहर आप देखिए सांसारिक दूरी में, आप लोग जानते हैं दफ्तर में कैसे लोग जाते हैं, बीमार तो हैं फिर भी जाते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं ठीक है आपको बुखार है, हम आपके लिए कैब भेज देते हैं, हमारे पास यहाँ डॉक्टर भी है और दवाई भी है, आप गाड़ी में आ जाओ और यहाँ आप अपना काम पूरा करो। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी में खाली नहीं बैठने देते, 18 घंटे आपको काम करना है, बीमार है तब भी आप, कोई छुट्टी नहीं है। जैसे जापान में ऐसे कई लोग हैं जो हफ्ते में केवल 2 घंटे जाते हैं घर, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे घर जाते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं गधे की तरह, पता नहीं क्या जीवन है। लेकिन हम इससे यही शिक्षा ले रहे हैं, कहने का अर्थ यह है कि हमें भी कृष्ण भक्ति को इतनी गंभीरता से लेना है, तब आएगा नाम में आकर्षण। आकाश से कुछ नहीं टपकने वाला है, प्रयास करना पड़ेगा हर चीज के। सोचे कि एकदम से मुझे नाम में रुचि आ जाएगी एकदम, है ना, आकाश में मैं देखूंगा राधा कृष्ण की लीलाएं, या सपने में लीलाओं की स्फूर्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या जीवन के अंत काल में लीला स्फूर्ति होने लगेगी मुझे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रयास करना है, जो साधना करनी है, वो अभी करनी पड़ेगी, कल कुछ नहीं है। लीलाओं का श्रवण कीर्तन आज करना पड़ेगा, जीवन के अंतकाल में थोड़ा करोगे तब तो सुनाई भी नहीं देगा आपको, आपका कंठ कफ वात और पित्त से भर चुका होगा, कान बंद हो गया होगा, आपको सुनाई नहीं देगा, है करते रहोगे आप, और कुछ दिखाई नहीं देगा तो दर्शन क्या करोगे आप, चारों खाने चित। तो जो अभ्यास कर चुका होगा, जिस उसकी चेतना जिसकी शुद्ध होगी, ऐसी अवस्था में भी वो कृष्ण का चिंतन कर पाएगा वो। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ने जब कहा मन तो बड़ा चंचल है कृष्ण, है ना, मैं तो वायु को काबू में कर सकता हूं, लेकिन मन को काबू में करना बहुत कठिन है मेरे लिए। तो कृष्ण ने उनकी बात को स्वीकार किया, अर्जुन बड़े खुश हुए, हाँ मैं मानता हूं कि मन को काबू में करना बहुत कठिन कार्य है। अर्जुन मुस्कुराए, लेकिन कृष्ण कहते हैं बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट इज पॉसिबल, निरंतर अभ्यास और विराग से ये संभव है इस मन को नियंत्रित करना, है ना। तो असंभव नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, प्रयास करना, प्रयास करके हमको आगे बढ़ना है। तो जो साधना करनी है, जो तपस्या करना है, जो कुछ भी करना है, आज और अभी करना है। कल के ऊपर मत भरोसा करिए, कल का दिन उज्जवल नहीं है, उज्जवल तो एक ही केवल एक ही चीज है, उज्जवल नीलमणि है। नीलमणि जानते कौन है? कृष्ण या राधारानी की आंख, यह नीलमणि यही है उज्जवल, बाकी कुछ भी उज्जवल नहीं है। हर दिन जैसे बीतता जा रहा है कलयुग अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, तो कैसे प्रचार होगा और कैसे हम खुद आगे बढ़ेंगे? जितनी गति से कलयुग बढ़ रहा है, जितनी गति से माया का प्रभाव बढ़ रहा है, उतनी गति से हमें बढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग माया के ऊपर विजय पा पाएंगे, है कि नहीं? छोटा सा जीवन है, इधर उधर जाके हम समय बर्बाद ना करें, और अगर प्रचार का कार्य नहीं है तो स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। हम यही बता रहे थे, हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे शुरू में, हम ये बता रहे थे कि समस्या क्यों हो गई आजकल भक्तों की, कि इतनी सेवाएं हो गई हो जाती हैं कई बार, हम लोग इस सिद्धांत को दर्शन की चर्चा करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमारे आचार्यों ने क्या बताया, प्रभुपाद ने क्या बताया। बोलते प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है अपनी किताबों में, प्रभुपाद ने सब कुछ दिया अपनी किताबों में, अच्छा बताइए जरा क्या दिया है सब कुछ, ये तो नहीं पता मुझे, ये जरूर पता है कि सब कुछ दिया है, सब कुछ क्या दिया ये नहीं पता, तो क्या फायदा फिर ग्रंथों का रखने का? जब इसलिए हम लोग ये कक्षाएं इसलिए करते हैं, खुद को याद दिलाने के लिए और दूसरों को भी याद दिलाने के लिए, ताकि फिर से गंभीर हो जाए, नहीं तो भूल जाते हैं, और फिर हमारा जब भी मैकेनिकल होने लग जाता है कुछ समय के बाद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करते रहते हैं बस, है कि नहीं? तो विचार, इसलिए सिद्धांत कोरी सिद्धांत बोलिया कोरे ना आलस, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि सिद्धांत की चर्चा करने में आलस नहीं दिखाना चाहिए, और कलयुग में लोग आलसी होते जा रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, ग्रंथों के अध्ययन में आलसी होते जा रहे हैं, श्रवण कीर्तन के लिए आलसी होते जा रहे हैं, जहां सेमिनार्स लेक्चर्स होते हैं वहां कोई होता ही नहीं, है ना? रविवार को जब भी युवाओं का कार्यक्रम होता है 15 लोग बैठे होते हैं मुश्किल से, इतने बड़े मंदिर में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कौन जाएगा, समय बर्बाद करेगा अपना, कहीं चलो वहां पे रिसोर्ट में चलो, मसूरी चलो, अभी गर्मियों में कहां जा रहे हो मंदिर, ये मंदिर जाने का समय थोड़ा है, या स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? हाँ जी, निश्चित रूप से, लेकिन ना लेने से लेना अच्छा है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्शियसनेस में जप कर रहे हो। अगर आप जप कर रहे हो बस में बैठ के और वहां पे भी विषयों का चिंतन हो रहा है, और बार बार आप मॉल की तरफ देख रहे हो, पीवीआर की तरफ देख रहे हो, पोस्टर की तरफ आपकी नजर जा रही है ना, तो फिर अच्छा है कि ऐसा जप करो ही मत, क्या फायदा? कहने का तात्पर्य यह है कि जप तो करना चाहिए, लेकिन सुधार करना पड़ेगा, और 16 माला का जब जो कम से कम है संख्या जो दी गई है, उसको तो हमें एक स्थान में बैठकर ही जप करना चाहिए, रास्ते का जो जप है वो काउंट नहीं करना चाहिए 16 माला में, वो एक्स्ट्रा राउंड्स हो गए आपके, और सुबह 8 माला हुई है तो आप रात को आगे 8 माला करिए, लेकिन इसमें कोई समझौता ना करिए क्वालिटी में, जहां क्वालिटी में समझौता किया वहां फिर क्या होगा, सब चीज में समझौता हो जाएगा, है कि नहीं? अपने साउंड को सुनना चाहिए और प्रभुपाद के साउंड को भी सुनना चाहिए, अपने साउंड को सुनना बहुत जरूरी है सबसे पहले, है कि नहीं? फिर ऐसा ना हो कल हम कहेंगे प्रभुपाद हमारे लिए जप करेंगे 16 माला, हम जप करना बंद कर देते हैं, प्रभुपाद का जपा 2 घंटा चला देंगे, हो गया जप, श्रवण तो कर ही लिया हमने, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। हम प्रभुपाद के साथ बैठ के जब इसलिए कर रहे हैं प्रभुपाद का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उसका संग लेने के लिए, है ना। उनकी शब्द ध्वनि हमें शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी, तो हमें जप करने में और शक्ति प्राप्त होगी। ये इस कारण से भुक्ति नाम का मतलब है कि नाम लेते हुए हम भोगने की इच्छा कर रहे हैं, सांसारिक सुख की आशा कर रहे हैं। जब भी हो रहा है सांसारिक सुख की भी आशा कर रहे हैं, पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए, पद मिल जाए पद मिल जाए पद मिल जाए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा कंचन कामनी सब की इच्छा हो रही है जब करते हो। ये है भुक्ति नाम, है कि नहीं।
और जब लेते हैं प्रभु जो और विचार आते हैं, मतलब जैसे कई प्रकार की, जैसे हमारी पूरे दिन की एक्टिविटी है जो वो आती है,
वो सब भुक्ति नाम है। जी गोस्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि जब करते हो केवल एक ही चीज का चिंतन होना चाहिए। पहले तो शब्द को सुनना है, शब्द ब्रह्म को, साउंड वाइब्रेशन को, और दूसरा क्या है उन्होंने बताया कि मंत्र का जो अर्थ है उसका चिंतन करना है, बस और कुछ नहीं। मंत्र का अर्थ क्या है, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, बस और कुछ नहीं, और कुछ चिंतन नहीं करना है, और किसी चीज का चिंतन नहीं करना, तब हम लोग विशेष आदर दे पाएंगे। उसका कारण क्या है, कोई बोल सकता है नहीं नहीं हम लोग सेवा का तो चिंतन कर सकते हैं, गुरु महाराज ने हमें सेवा दी है उन सेवाओं का तो चिंतन कर सकते हैं, या इन सेवाओं का तो चिंतन कर सकते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि हम लोगों का हमारा मन इतना स्थिर नहीं है, जब सेवाओं का चिंतन करने लग जाते हैं तो फिर हम और भी सेवाओं का चिंतन करना शुरू कर देते हैं, फिर और सेवाओं का चिंतन करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से हमारा मन भटक जाएगा, कि मन बड़ा ये चालाक है तो आपको बोलेगा नहीं नहीं आप सेवाओं का चिंतन करो, फिर बोलेगा ठीक है आप इस सेवा का चिंतन करो, फिर घर में क्या सेवा उसका चिंतन करो, फिर ऑफिस में क्या चल रहा है उसका चिंतन करो, सेवा तो सेवा ही है, सब जगह सेवा ही हो रही है, तो माइंड बड़ा ट्रिकी है, इसलिए अपने को पहले इस पर स्थिर करना है, स्टडी करना है, तब जाके लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, हरि नाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंद, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त प्रेम।